लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि जिन समाजों में सह अस्तित्व अधिक कठिन प्रतीत होता है, वे जातीय, राजनैतिक, धार्मिक या वैचारिक कारणों से टकराव के प्रलोभन में न फंसें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कुमारी मरियम के स्वर्गारोहण पर्व के अवसर पर संत पापा लियो का प्रवचन और देवदूत प्रार्थना का संदेश। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक का। संत पापा लियो ने कस्तल गंदोल्फो में कुमारी मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हुए मिस्सा बलिदान अर्पित किया। उन्होंने अपने प्रवचन में कुमारी मरियम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जीवन का चुनाव करने का संदेश दिया। संत पापा लियो ने कस्तल गंदोल्फो के संत थॉमस विला नोवा परम धर्म पीठ पल्ली में माता मरियम के स्वर्गारोहण का मिस्सा बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने अपने प्रवचन में कहा,
Oggi non è domenica, ma in modo diverso celebriamo la Pasqua di Gesù che cambia la storia.
आज रविवार नहीं है, फिर भी हम यीशु के पास्का रहस्य को दूसरे रूप में मनाते हैं, जिसने इतिहास को बदल दिया। नाजरेत की मरियम में हम स्वयं अपने इतिहास को पहचानते हैं, कलीसिया के इतिहास को जो मानव के इतिहास में समा गई, उनमें मानव जीवन को धारण करते हुए जीवन और स्वतंत्रता के ईश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई। हाँ, आज हम मृत्यु पर ईश्वर की जीत पर चिंतन करते हैं, यद्यपि यह हमारे बिना संभव नहीं है। उनका राज्य है, लेकिन यह उनके प्रेम के प्रति हमारा हाँ है, जो सारी चीजों को परिवर्तित कर सकता है। क्रूस पर यीशु ने उस हाँ को स्वतंत्रता में उच्चारित किया, जो मृत्यु की शक्ति को खत्म करती है। मृत्यु जो अब भी उन स्थानों में फैलती है जहाँ हमारे हाथ क्रूसित होते हैं और हमारे हृदय भय और अविश्वास में कैद हो जाते हैं। क्रूस में विश्वास है, उसी तरह प्रेम भी, जो उन चीजों को देखती है जो आने वाली है, और क्षमा अपने में विजयी होती है। मरियम वहाँ अपने पुत्र के संग संयुक्त थी। संत पापा ने कहा, हमारे समय में जब कभी हम नहीं भागते, हम मरियम के समान होते हैं। जब हम यीशु के हाँ को अपना बनाते हैं, वह हाँ आज भी जीवित है, और हमारे समय के शहीदों में जहाँ हम विश्वास और न्याय, नम्रता और शांति का साक्ष्य देते हैं। इस भांति खुशी का यह दिन हमारे लिए चुनाव हेतु बुलावा का भी एक दिन होता है। हम कैसे और किसके लिए जीते हैं? संत पापा ने कहा, स्वर्गारोहण के इस समारोह में धर्म विधि का सुसमाचार मरियम की भेंट को प्रस्तुत करता है।
San Luca trasmette in questa pagina la memoria di un momento cruciale nella vocazione di Maria.
संत लुकस इस पद में मरियम की भेंट को एक निर्णायक क्षण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। उस दिन की याद करना हमारे लिए कितना मनोरम है, जहां हम उनके ताज पोशी की याद करते हैं। हर मानव का इतिहास ईश्वर की माता के इतिहास की भांति ही इस पृथ्वी पर छोटा और खत्म होने वाला है, फिर भी कुछ नहीं खोता है। जब एक जीवन समाप्त होता है, इसकी अद्वितीयता अपने में और भी स्पष्ट दिखाई देती है। मरियम का ईश महिमा गान, जिसे सुसमाचार युवा नारी के मुख से घोषित करता है, उनके पूरे जीवन में ज्योति बिखेरता है। एक दिन जब वह अपने कुटुम्बिनी एलिजाबेथ से भेंट करती है, अपने में हर दिन के बीज हर मौसम को वहन करता है, और इसके लिए शब्द काफी नहीं है। हमें एक गीत की जरूरत है, एक गीत जिसे कलिसिया में पीढ़ी दर पीढ़ी दिन की समाप्ति में गाई जाती है, एक पुत्रहीन नारी एलिजाबेथ का आश्चर्य में गर्भवती होना मरियम के विश्वास को सुदृढ़ करता है। यह उसके हाँ में अभिव्यक्त होती जो कलीसिया और सारी मानवता को फलप्रद बनाती है। जब हम ईश्वर के नवीकृत वचनों को अपने में स्वागत करते हैं, उन दिनों दो नारियों का विश्वास में मिलन हुआ जो 3 महीने तक एक साथ रहीं। उन्होंने न केवल भौतिक रूप में बल्कि इतिहास को एक नए रूप में एक दूसरे को पढ़ने हेतु मदद किया। इस भांति प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा ने कहा, पुनरुत्थान आज भी हमारे विश्व में प्रवेश करता है। शब्द और मृत्यु के स्वरूप रह जाते हैं, लेकिन जीवन के ईश्वर हमारी निराशा को ठोस भ्रातृत्वमय अनुभवों और एकता की नई निशानियों से तोड़ते हैं। हमारे अंतिम पड़ाव में पहुंचने के पहले पुनरुत्थान शरीर और आत्मा हमारे निवास स्थल को इस धरती पर बदलता है। मरियम का ईश गुणगान दीनों की आशा, भूखों और ईश्वर के विश्वासी सेवकों को मजबूत करती है। ये धन्य वचनों के नर और नारियां हैं जो अपने मुसीबतों में भी अदृश्य को देखते हैं। ईश्वर शक्तिशालियों को उनके सिंहासनों से गिरा देता, धनियों को खाली हाथ भेजता, ईश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है। इन अनुभवों को हर ख्रिस्तीय समुदाय में दिखाई देना चाहिए। ये असंभव दिखाई देते हों, लेकिन ईश्वर का वचन निरंतर ज्योति संचार करता है। जब एक एकता उत्पन्न होती है जिसके द्वारा हम बुराइयों का सामना अच्छाई से और मृत्यु का सामना जीवन से करते हैं, तो हम इस बात को पाते हैं कि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। संत पापा ने कहा,
A volte purtroppo, dove prevalgono le sicurezze umane, un certo benessere materiale e quella rilassatezza che addormenta le coscienze, questa fede può invecchiare.
कभी-कभी दुर्भाग्यवश जहां हम मानवीय आत्मनिर्भरता को पाते हैं, जहां भौतिक सुविधा और एक निश्चित आत्म संतुष्टि चेतना को धीमा कर देती है, विश्वास अपने में पुराना हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में मृत्यु, परित्याग और शिकायत पुरानी यादों और भय के रूप में प्रवेश करती है। पुरानी चीजों को छोड़ने के बदले व्यक्ति उनके संग जुड़ा रहता है, धनियों और शक्तिशालियों से सहायता की मांग करता, जो बहुधा गरीबों और छोटे लोगों के लिए घृणा स्वरूप आती है। कलीसिया यद्यपि अपने लोगों की संवेदनशीलता में रहती है और वह उनके ईश गुण गान में नवीकृत होती है, हमारे समय में भी गरीब और सताए जाने वाले ख्रिस्तीय समुदाय युद्ध के क्षेत्र में कोमलता और क्षमाशीलता का साक्ष्य तथा टूटती दुनिया में शांति की स्थापना कलीसिया की खुशी है। वे उनके संग बने रहने वाले फल हैं, ईश्वरीय राज्य के प्रथम फल। उनमें बहुत से नारियां, बुजुर्ग एलिजाबेथ और युवा मरियम, पास्का के समय की नारियां पुनरुत्थान की प्रेरित हैं। आइए हम उनके साक्ष्य द्वारा अपने में परिवर्तन लाएं। संत पापा ने कहा, प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब हम इस दुनिया में जीवन का चुनाव करते हैं, हम मरियम में अपने भाग्य को देखते हैं। वे हमारे लिए एक निशानी के रूप में दी गई हैं कि यीशु का पुनरुत्थान अपने में कोई अलग घटना नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। यीशु में हम भी मृत्यु को निगल सकते हैं। हम इस बात से निश्चित हों कि यह हमारा नहीं बल्कि ईश्वर का कार्य है। फिर भी मरियम ईश्वरीय कृपा और स्वतंत्रता का एक अद्भुत मिलन है। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। हम में से हर कोई इस खुशी को जाने और एक नए गाने में इसे घोषित करे।
Non abbiamo paura di scegliere la vita.
हम जीवन का चुनाव करने में ना डरें। यह अपने में जोखिम भरा और अविवेकी होने जैसा लगता है। बहुत सी आवाजें फुसफुसाती हैं, क्यों व्यर्थ के कार्य करते हो, जाने दो, आप अपने रुचियों के बारे में सोचो। ये सारी मृत्यु की आवाजें हैं, लेकिन हम यीशु के शिष्य हैं, संत पापा ने कहा। यह उनका प्रेम है जो हमारी आत्मा और शरीर को प्रेरित करता है। व्यक्तिगत रूप में कलीसिया के रूप में हम अपने लिए जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन केवल यही जीवन का संचार करता और केवल यही जीवन को बनाए रखता है। मृत्यु पर हमारी विजय यहाँ और अभी से शुरू होती है। संत पापा लियो ने माता मरियम के स्वर्गारोहण का महापर्व बनाते हुए कस्तल गंदोल्फो के प्रांगण में विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने सबों का अभिवादन करते हुए कहा,
कारी प्रतिले सुरेले बोना फेस्टा। I padri del Concilio Vaticano II ci hanno lasciato un testo stupendo sulla Vergine Maria che mi piace rileggere con voi oggi mentre celebriamo la solennità dell'Assunzione alla gloria del cielo.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, पर्व की शुभकामनाएं। द्वितीय वैटिकन महासभा के पुरोहितों ने हमारे लिए कुमारी मरियम के संदर्भ में एक आश्चर्यजनक लेख छोड़ा है। उसके एक अंश को मैं आज मरियम के महिमामय स्वर्ग में आरोहित किए जाने के महापर्व के अवसर पर पढ़ना चाहूंगा। कलीसियाई दस्तावेज के अंत में धर्म सभा कहती है, यीशु की माता महिमामय सह शरीर और आत्मा स्वर्ग में उठा ली गई कलीसिया की निशानी और शुरुआत है, जिसे संसार में परिपूर्ण किया जाना है। उसी भांति वह पृथ्वी में प्रदीप्त होती हैं उस दिन तक जब ईश्वर का आगमन होगा, जो निश्चित रूप में कलीसियाई तीर्थयात्री ईश प्रजा के लिए एक आशा और सांत्वना है। संत पापा ने कहा, मरियम जिसे पुनर्जीवित ख्रिस्त ने सह शरीर और आत्मा सहित अपनी महिमा में सहभागी होने हेतु उठा लिया, उनके तीर्थयात्री संतानों के पूरे इतिहास में आशा की एक निशानी स्वरूप चमकती हैं। इस संदर्भ में हम दांते के पदों पर कैसे विचार नहीं कर सकते हैं, जिसे वे स्वर्ग का अंतिम गान में प्रस्तुत करते हैं। यह संत बेर्नाडो के होठों से उच्चारित प्रार्थना कुमारी माता तेरे पुत्र की पुत्री से शुरू होती है।
Il poeta loda Maria perché qua giù tra noi mortali è di speranza fontana vivace।
कवि हम नश्वरों के मध्य मरियम की महिमा करते हैं, वह सजीव आशा की सिर मौर हैं, अर्थात जीवन झरना जो आशा में फूट कर निकलती है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत पापा लियो ने कहा कि विश्वास की हमारी यह सच्चाई पूरी तरह से जयंती की हमारी विषय वस्तु से मेल खाती है। आशा के तीर्थयात्री, तीर्थयात्रियों को एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है जो उन्हें दिशा प्रदान करे, एक सुंदर और आकर्षित करने वाला लक्ष्य जो उनके कदमों को दिशा निर्देशित करे और थकान होने से उनमें नव स्फूर्ति का संचार करे, जो सदैव उनके हृदय में एक चाह और आशा को आलोकित करती है। जीवन के डगर में ईश्वर हमारे लक्ष्य हैं। अनंत और असीमित प्रेम, जीवन की पूर्णता, शांति, खुशी और हर अच्छी चीजें। मानव का हृदय इन सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होता है और वह तब तक खुश नहीं होता जब तक वह उन्हें प्राप्त नहीं करता है। और वास्तव में यदि वह बुराई और पाप के अंधेरे जाल के बीच में खो जाए तो वह उसे नहीं पाने के खतरे में पड़ जाता है। संत पापा ने कहा, आइए हम कृपा के बारे में विचार करें। ईश्वर हमसे भेंट करने आते हैं। उन्होंने हमारी तरह शरीर धारण किया और वे हमारे बीच में आते हुए ईश्वर की उपस्थिति को लाते हैं। यह जैसे हम साधारण रूप में कहते हैं वे स्वर्ग में हैं। यह यीशु ख्रीस्त का रहस्य है जो शरीर धारण कर मनुष्य बने, मरे और हमारी मुक्ति हेतु जी उठे। उनमें अविभाजित हम मरियम के रहस्य को भी पाते हैं। नारी जिनके द्वारा ईश्वर के पुत्र ने मानव और कलिसा का रूप ख्रीस्त का रहस्यात्मक शरीर धारण किया, यह हमारे लिए एक अद्वितीय प्रेम के रहस्य को प्रकट करता है और इस भांति स्वतंत्रता को।
Come Gesù ha detto sì, così Maria ha detto sì, ha creduto alla parola del Signore.
जैसे कि यीशु ने हाँ कहा, उसी भांति मरियम ने हाँ कहा। उन्होंने ईश्वर के वचनों में विश्वास किया। अपने बेटे ईश्वर के पुत्र संग उनका संपूर्ण जीवन हमारे लिए आशा का तीर्थ है जो क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा स्वर्गीय निवास में पहुंचता है, जहां हम ईश्वर के आलिंगन को पाते हैं। यही कारण है जब हम अपनी यात्रा करते हैं, चाहे हम व्यक्तिगत परिवारों और समुदायों के रूप में क्यों ना हो, विशेषकर जब हम बादलों को देखते जो हमारे मार्ग में कठिनाई और अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं, हम अपनी निगाहें उनकी ओर फेरें। वे हमारी माँ हैं जिनमें हम आशा को पाएंगे जो हमें कभी निराश नहीं करती हैं।
Ritroveremo la speranza che non delude.
इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने तीर्थयात्रियों और विश्वासी समुदाय के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Requiem aeternam donis Domine. Requiescant in pace.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui feci cielo in terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।